ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। इसी फागुन 21 गते होने जा रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 3 दिनों तक सार्वजनिक छुट्टी देने का सरकार का निर्णय। निर्वाचन के लिए चीन सरकार 40 लाख अमेरिकी डॉलर सहयोग करेगी प्रदान। मानवाधिकार के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए नेपाल दृढ़ है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। और ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन में 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी फागुन 21 गते होने वाली प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के अवसर पर 3 दिन का सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फागुन 20, 21 और 22 गते सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने दी। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने 3 दिनों तक छुट्टी देने का निर्णय किया है। चीन सरकार ने फागुन 21 गते होने जा रहे निर्वाचन के लिए 40 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली इस राशि को स्वीकार करने का निर्णय किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल के अनुसार बैठक ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट तथा कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार बूढ़ी गंडकी जलाशय युक्त परियोजना के वित्तीय निवेश ढांचे को स्वीकृति देने का निर्णय भी किया है। साथ ही बैठक ने काठमांडू जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश दिवाकर भट्ट को काठमांडू जिला अदालत का कार्यभार भी संभालते हुए उपभोक्ता अदालत काठमांडू का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद ने बीमा एन 2079 के अनुसार अपराध से संबंधित मामलों की कार्रवाई और निपटारे के लिए जिला अदालत को अधिकृत करने तथा वर्ष 2083 के वैशाख 1 गति से चैत मसांत तक के सार्वजनिक छुट्टी भी निर्धारित किए हैं। बैठक ने जेएनजी परिषद गठन करने का भी निर्णय किया है। ये जानकारी प्रवक्ता अर्याल ने दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति दृढ़ रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जेनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 61वें नियमित सत्र में नेपाली प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख के रूप में वीडियो संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि नेपाल पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वर्तमान विश्व में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बनाने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय में केंद्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक ने सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए चारों सुरक्षा निकायों से शीघ्र परिचालन के उद्देश्य से अतिरिक्त रिजर्व फोर्स बढ़ाने का निर्णय किया है। बैठक में गृहमंत्री अर्याल ने निर्वाचन सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी सुरक्षा निकायों को आपसी समन्वय के साथ त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने का निर्देश किया। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष प्रणाली के मतपरिणाम मतदान संपन्न होने के 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक करने की तैयारी की है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने जानकारी दी कि इस बार केवल प्रतिनिधि सभा का ही चुनाव हो रहा है, इसलिए परिणाम आने में अधिक समय नहीं लगेगा। उनके अनुसार समानुपातिक मत परिणाम आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली का परिणाम मतपेटिकाओं के संकलन के 24 घंटे के भीतर ही घोषित करने की आयोग की तैयारी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की तैयारी के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थापन कार्य पूरे हो चुके हैं और आयोग पूरी तरह कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुका है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने फागुन 21 गते होने जा रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के अवलोकन के लिए कूटनीतिक नियोग के अधिकारियों और विदेशी मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी संभालने वाले संपर्क अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। आयोग द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जवरा ने कहा कि मतदान के दौरान कूटनीतिक नियोग के कर्मचारी और विदेशी मेहमान कहां तक जा सकते हैं, इस विषय में संपर्क अधिकारियों को स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक विपन्नता या न्यून आर्थिक आय स्रोत वाले नागरिकों की पहचान के आधार और मापदंड निर्धारित कर ऐसे नागरिकों के अदालती शुल्क माफ या छूट देने संबंध में स्पष्ट कानून व्यवस्था करने का सरकार के नाम पर निर्देशनात्मक आदेश जारी किया है। न्यायाधीशों हरिप्रसाद फुयाल और नित्यानंद पांडे की साझा पीठ ने 2082 जेठ 29 के आदेश के पूर्ण पाठ में 3 सूत्रीय निर्देशनात्मक आदेश किया है। इस बात के उल्लेख के साथ कि कानून निर्माण का विषय बुद्धिमता का क्षेत्र है, नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के नाम पर जारी किए गए आदेश में अदालती शुल्क बाद में लेने के हिसाब से मुकदमा दर्ज होने के बाद उसमें पराजित होने पर क्लेम की गई संपत्ति के अलावा अन्य कोई संपत्ति न होने की अवस्था में ऐसे अदालती शुल्क छूट या पूरी तरह माफ किए जा सकने की अवस्था आधार और मापदंड संबंधी स्पष्ट कानून बनाने के लिए कहा गया है। फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन आज काठमांडू के बसंतपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार के आगे चीर खड़ा किए जाने के बाद आज से यहां फागु पर्व शुरू हुआ है। इस साल पहाड़ी जिलों में फागुन 18 गते सोमवार और तराई के जिलों में फागुन 19 गते मंगलवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग लापता हैं। मिनास गेरेस राज्य के अधिकारियों ने बताया कि 400 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। मिनास गेरेस अग्निशमन विभाग के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया कि 14 लोगों की मृत्यु हुई है और कम से कम 45 लोग लापता हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इसी फागुन 21 गते होने जा रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 3 दिनों तक सार्वजनिक छुट्टी देने का सरकार का निर्णय। निर्वाचन के लिए चीन सरकार 40 लाख अमेरिकी डॉलर सहयोग करेगी प्रदान। मानव अधिकार के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए नेपाल दृढ़ है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। और ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।